पृष्ठ संख्या 229। यूरोप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में यूरोप के घटनाचक्र को पूरी तरह समझने के लिए प्रत्येक देश के बारे में अलग अलग वर्णन करना उपयोगी होगा। पुर्तगाल, स्पेन और यूनान। युद्धोत्तर यूरोप की 1980 के दशक तक प्रथम प्रमुख विशेषता यह थी कि वह दो भागों में बट गया था। पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी दलों के शासन के अधीन आ गए और उन्होंने सोवियत संघ के साथ मैत्री संबंध बनाए। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप के देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ विभिन्न प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कायम हुई और ये देश संयुक्त राज्य के प्रभाव में आ गए। इस व्यवस्था के प्रमुख अपवाद यूरोप के तीन पिछड़े देश पुर्तगाल, स्पेन और कई वर्षों तक यूनान रहे थे। पुर्तगाल में सालाजार की तानाशाही जो 1932 में स्थापित हुई थी 1968 तक कायम रही, जब अंततः अस्वस्थता के कारण उसने पद त्याग कर दिया। 1974 ईस्वी में कनिष्क सैनिक अफसरों के एक गुट ने पुर्तगाली साम्यवादियों, समाजवादियों तथा अन्य लोकतंत्रवादियों के समर्थन में तानाशाही शासन को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर एक नया लोकतांत्रिक संविधान लागू किया गया। स्पेन में फ्रांको द्वारा गृह युद्ध में जीत के बाद स्थापित फांसीवादी तानाशाही 1975 में उसकी मृत्यु के होने तक कायम रही। उसकी मृत्यु के बाद उदारीकरण आरंभ हुआ और राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। 1977 में 40 साल से अधिक समय के बाद पहली बार स्वतंत्र चुनाव कराए गए। स्पेन का समाजवादी दल देश की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। यूनान में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद भी कोई अस्थिर लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम नहीं हो पाई। 1967 में फौजी अफसरों के एक गुट ने सत्ता हथिया कर एक तानाशाही पूर्ण शासन व्यवस्था कायम की। यूनान में दीर्घकाल तक लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने का मामला यूरोप के लोगों की चिंता का कारण बना रहा। यूनानी राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित लोग देश छोड़कर चले गए थे या जेलों में दिन काट रहे थे। हालांकि देश के भीतर प्रतिरोध का आंदोलन जोर पकड़ रहा था, उसे देश के बाहर चल रहे एक प्रबल प्रतिरोध आंदोलन का समर्थन भी प्राप्त था। 1974 में कर्नलों का शासन के नाम से प्रख्यात यूनानी सैनिक तानाशाही का अंत हो गया और यूनान एक बार फिर गणतंत्र बन गया। पश्चिमी यूरोप। यूरोप के अधिकांश देशों खास तौर से फ्रांस और इटली में साम्यवादी और समाजवादी महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियां बनी रही, किंतु हाल के वर्षों में साम्यवादी दल के प्रभाव में विशेष कमी आई है। पश्चिमी जर्मनी और अन्य अनेक यूरोपीय देशों में समाजवादी लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेटिक दल महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बने रहे हैं और उन्होंने बहुधा स्वतंत्र रूप से अकेले या सहयोगी दलों के साथ सरकारें बनाई। ब्रिटेन में समय समय पर लेबर पार्टी सत्तारूढ़ होती रही है। द्वितीय विश्व युद्ध का यूरोप के लोगों के राजनीतिक चिंतन पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। युद्ध के शीघ्र बाद यूरोप के कई देशों में वामपंथी दल सत्तारूढ़ हुए। फ्रांस और इटली में 1947 तक सरकार में साम्यवादी भी शामिल थे। इन सरकारों ने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए जिनसे अधिकतर यूरोपीय समाजों में युद्ध से पहले व्याप्त घोर असमानताओं को दूर करने में मदद मिली। इन देशों में कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जब दक्षिण पंथी और मध्य मार्गी दल सत्तारूढ़ हुए, तब भी शक्तिशाली श्रमिक संघों की गतिविधियों के कारण वे किसी बड़े कल्याण कार्यक्रम को उलट नहीं पाए। हमने पहले यूरोप के उद्वार कार्यक्रम यूरोपीय रिकवरी प्रोग्राम का उल्लेख किया था। इस योजना ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को शीघ्र ही अपने युद्ध पूर्व स्तर तक पहुंचाने में मदद की। इसके बाद इन देशों की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ और कुछ ही वर्षों में फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी औद्योगिक महाशक्तियों के रूप में उभर कर सामने आए। पश्चिमी जर्मनी का आर्थिक विकास विशेष रूप से उल्लेखनीय था। उसने शीघ्र ही अन्य सभी यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ दिया। शांति आंदोलन। युद्ध के बाद कई वर्षों तक यूरोप शीत युद्ध के संघर्षों का प्रमुख केंद्र बना रहा। अधिकांश पश्चिम यूरोपीय देश नाटो के सैनिक गठबंधन के सदस्य थे और उनके प्रदेशों में नाटो के सैनिक और अन्य सैन्य अड्डे मौजूद थे जो संयुक्त राज्य द्वारा दिए गए परमाणु शस्त्रों और मिसाइलों से लैस थे। इससे यूरोप के तनावों में अधिक वृद्धि हुई। 1950 के दशक के अंतिम दौर में नाटो के अड्डों को हटाना शांति आंदोलन की एक प्रमुख मांग बना रहा, जो यूरोप के कई देशों में काफी शक्तिशाली होते जा रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अलग परमाणु अस्त्र बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें वे परमाणु या स्वतंत्र परमाणु भयो उत्पादक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डिटरेट कहते थे। ब्रिटेन को अब भी यह विश्वास था कि वह एक बड़ी विश्व शक्ति है और इसलिए उसकी भूमि पर संयुक्त राज्य के परमाणु हथियारों के अतिरिक्त अपने परमाणु हथियार भी होने चाहिए। लेकिन ब्रिटेन में एक शक्तिशाली शांति आंदोलन उठा, परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान, कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिस आर्मामेंट CND के नेतृत्व में चलने वाले इस शांति आंदोलन ने ब्रिटेन में संयुक्त राज्य के अड्डे बंद करने और ब्रिटेन द्वारा एक तरफा परमाणु निरस्त्रीकरण लागू करने की मांग की। यूरोप के प्रभुत्व की समाप्ति। युद्धोत्तर काल में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विश्व से यूरोप के प्रभुत्व की समाप्ति थी। युद्ध समाप्त होने के लगभग 2 दशकों के भीतर एशिया और अफ्रीका में यूरोप के अधिकांश साम्राज्य मिट चुके थे। यूरोप के साम्राज्यवादी देश अपना साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और कई मामलों में तो उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी लोग हिंद चीन में अपना शासन कायम का रखने के लिए 1947 से 1954 तक लड़ते रहे और अल्जीरिया में 1954 से 1962 तक लड़ाई जारी रही। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि पुर्तगालों ने, जो यूरोप का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ देश था, सबसे अधिक समय तक अपना साम्राज्य कायम रखा। पुर्तगाल में क्रांति होने के बाद नई पुर्तगाली सरकार ने इन देशों के स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं से वार्ता आरंभ की। अंततः 1975 में मोजाम्बिक और 1976 में अंगोला आजाद हो गए। यूरोपीय एकता। एक महत्वपूर्ण घटना जिससे पश्चिमी यूरोप एक महान विश्व शक्ति के रूप में उभरा, वह पश्चिमी यूरोप के एकीकरण का आंदोलन था। आरंभ में जिस बड़े देश ने पहल की, वह फ्रांस था। उसका विश्वास था कि वह संयुक्त पश्चिमी यूरोप का स्वाभाविक नेता था। इस दिशा में पहला कदम उठाना उसका मुख्य कर्तव्य था। 1957 में उस समय वह कदम उठाया गया जब यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना हुई। इस समुदाय में फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग और इटली शामिल थे। इन देशों ने एक बाजार स्थापित किया जो साझा बाजार, कॉमन मार्केट के नाम से प्रसिद्ध है। माना जा रहा था कि यह पश्चिमी यूरोपीय देशों के एक संघ के गठन की दिशा में शुरुआती कदम होगा। आरंभ में ब्रिटेन ने स्वयं को इस समुदाय से अलग रखा, लेकिन जब 1961 में उसने इसमें शामिल होना चाहा तो फ्रांस ने इसका विरोध किया। अंततः उसे दो देशों, डेनमार्क और आयरलैंड के साथ 1973 में EEC में प्रवेश दे दिया गया। इस समुदाय के 9 सदस्यों के बाद में यूरोपीय संसद की स्थापना की। कुछ समय पश्चात यूनान, स्पेन और पुर्तगाल को भी इस समुदाय में दाखिला दे दिया गया। अगले कुछ वर्षों के दौरान संयुक्त पश्चिमी यूरोप की एक राजनीतिक सत्ता के रूप में उदय की संभावनाएं सच होती दिखाई देने लगी। पहले ही EEC देशों में एक सामान्य मुद्रा लागू करने और एक EEC देश से दूसरे देश की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता समाप्त करने की योजना तैयार की जा रही थी। इस बीच जर्मनी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की प्रबल आर्थिक शक्ति के रूप में उभर चुका था। जर्मनी का एकीकरण हो जाने के बाद से उसका प्रभाव अधिक बढ़ने की संभावना है। अपने साम्राज्य को खो जाने के बावजूद पश्चिमी यूरोप के देश संगठित होकर विश्व की एक नई शक्ति के रूप में उभरे। संयुक्त राज्य पर उसकी आर्थिक निर्भरता कम होती गई और अब संभाव्यतः वे विश्व के मामलों में अधिक स्वतंत्र भूमिका निभाएंगे। 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन आर्थिक समुदाय यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन में बदल गया। पहले यह प्रमुख रूप से केवल पश्चिमी यूरोपीय देशों का एक समूह था, जो 2007 में 27 यूरोपीय देशों के संघ में बदल गया। इसके उद्देश्यों में विभिन्न यूरोपीय देशों के बीच लोगों, सामान और सेवाओं की स्वतंत्र आवाजाही तथा पूंजी के आदान प्रदान के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना था। 2004 में पूर्वी यूरोप के 7 देशों एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, उस समय तक चेकोस्लोवाकिया 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित हो चुका था, पोलैंड और हंगरी, जिन पर पहले साम्यवादी दलों का शासन स्थापित था और जो सोवियत संघ के मित्र देश थे, अब यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गए। शीघ्र ही इनमें 2 भूतपूर्व साम्यवादी देश बुल्गारिया और रोमानिया तथा स्लोवेनिया, जो यूगोस्लाविया से टूटकर अलग हुआ था, भी शामिल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी देशों ने स्वतंत्र अर्थव्यवस्था स्थापित कर ली थी। इसके अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन के यह सभी नए सदस्य देश नाटो के भी सदस्य देश बन गए। इनमें से 2 देशों पोलैंड और चेक गणराज्य में मिसाइल तैनात किए गए, जिनके बारे में रूसी संघ के नेताओं का मानना है कि यह उनके देश के विरुद्ध उपयोग किए जा सकते हैं। इस घटना ने यूरोप में नया तनाव पैदा कर दिया है। कुछ अन्य देश जैसे तुर्की और यूगोस्लाविया के भूतपूर्व गणराज्य यूरोपीय यूनियन की सदस्यता की मांग कर रहे हैं। तुर्की पहले ही नाटो का सदस्य देश है। यूरोप को एक अकेली सत्ता के रूप में संगठित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं। यूरोपीय संघ के 15 सदस्य देशों ने एक सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया है। अधिकांश सदस्य देशों के लोग स्वतंत्र रूप से पासपोर्ट के बिना इन देशों में आ जा सकते हैं। एक साझे संस्थागत ढांचे का भी विकास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्य यूरोपियन यूनियन के विभिन्न देशों से निर्वाचित हुए हैं और पार्लियामेंट में उनकी उपस्थिति ने राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ दिया है। वहाँ एक यूरोपीय न्यायालय यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी स्थापित किया गया है, जहाँ कुछ मामलों में यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के आम नागरिकों की शिकायतें भी सुनी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंध कुछ मामलों में यूरोपियन यूनियन ने एक साझा स्थिति तैयार की है, किंतु अन्य अनेक मसलों पर प्रत्येक देश ने अपनी अलग हैसियत निर्धारित की है। उदाहरण के लिए, इराक युद्ध में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य के एक घनिष्ठ मित्र की भूमिका निभाई, लेकिन कुछ अन्य देशों जैसे फ्रांस ने इराक पर संयुक्त राज्य के हमले का पूरी तरह विरोध किया। इसी प्रकार स्पेन, जिसने लड़ाई छिड़ने पर अपनी सेनाओं को इराक भेजा था, लेकिन जब देश में समाजवादी सरकार निर्वाचित हुई तो उसने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया। पूर्वी यूरोप, जिन पूर्वी यूरोपीय देशों को सोवियत सेनाओं ने मुक्त कराया था, वहां साम्यवादी दलों और उनके समर्थकों ने अपना एक छत्र शासन स्थापित किया। ये देश वर्सा गठबंधन के सदस्य के रूप में सोवियत संघ से जुड़े हुए थे। उन्हें अक्सर सोवियत संघ के उपग्रह देश कहा जाता था। अक्सर सोवियत संघ इन देशों के साम्यवादी दलों और सरकारों पर अपनी मर्जी थोप देता था, जिसके लिए कभी-कभी सेना का भी प्रयोग किया जाता था। इन देशों को यूरोपीय उद्वार कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं मिला। उन्हें अधिकतर अपने संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ा। सोवियत संघ उन्हें इस प्रकार की भारी सहायता देने की स्थिति में नहीं था, जैसी सहायता संयुक्त राज्य द्वारा पश्चिमी देशों को दी जा रही थी। इन देशों में सोवियत मॉडल के आधार पर समाजवाद का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा था। इन देशों की अर्थव्यवस्था घनिष्ठ रूप से सोवियत अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई थी, जिसमें सोवियत अर्थव्यवस्था के समान दोष भी मौजूद थे। इनमें से अधिकतर देशों में कृषि पर आधारित पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं कायम थी, यद्यपि उनके आर्थिक विकास का स्तर पश्चिमी यूरोप के उन्नत देशों के बराबर नहीं था, तथापि इनका औद्योगिकीकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन देशों ने आर्थिक सत्ता को कुछ निजी हाथों में सौंप देने के कारण उत्पन्न होने वाली बुराइयों से अपना बचाव किया, तथा पुराने शासक वर्ग और बड़े जमींदारों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी दलों के शासन की समाप्ति का पहले उल्लेख किया जा चुका है। 1985 के बाद सोवियत संघ की घटनाओं का इन देशों की राजनीतिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ा। 1989 और 1991 के बीच इनमें से लगभग सभी देशों में साम्यवादी शासन का अंत हो गया। रोमानिया और अल्बानिया, सोवियत संघ और चीन में दरार पड़ने के कारण इन देशों में से जो दो देश रोमानिया और अल्बानिया 1960 के दशक में सोवियत नियंत्रण से मुक्त हो गए, अल्बानिया वर्सा गठबंधन से भी अलग हो गया। लेकिन इन देशों में साम्यवादी दलों के एकछत्र नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सच तो यह है कि अन्य पूर्वी देशों की अपेक्षा इन देशों में स्थापित साम्यवादी दलों के शासन को अधिक सर्वसत्तावादी कहा जा सकता है। दिसंबर 1989 में रोमानिया में निकोलाई चेचेस्को के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जन विद्रोह भड़क उठे। सेना की कई टुकड़ियां भी सरकार के खिलाफ उठ खड़ी हुई। चेचेस्को और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। चुनावों के बाद एक गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ हुई। अल्बानिया में साम्यवादी दल का शासन 1992 में समाप्त हो गया। पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड में साम्यवादी दल के शासन के खिलाफ सॉलिडैरिटी नामक एक संगठन के नेतृत्व में आंदोलन चला। 1989 में सॉलिडैरिटी और सरकार के बीच एक समझौता हुआ और स्वतंत्र चुनावों के बाद एक गैर साम्यवादी नेता पोलैंड का प्रधानमंत्री बना। हंगरी में 1956 में विद्रोह हुआ था, जिसे रूस ने बेरहमी से दबा दिया। 1990 में स्वतंत्र चुनाव कराए गए और वहां भी एक गैर साम्यवादी सरकार कायम हुई। चेकोस्लोवाकिया में 1968 में वर्सा गठबंधन के देशों के सशस्त्र हस्तक्षेप के बाद अलेक्जेंडर दुबचेक को हटा दिया गया, जिसने अपने काल में राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार लागू करने आरंभ किए थे। दिसंबर 1989 में हुए विशाल प्रदर्शनों और हड़तालों के बाद साम्यवादियों की प्रभुसत्ता का अंत हो गया। एक प्रसिद्ध चेक लेखक वैक्लाव हैवेल को चेकोस्लोवाकिया का राष्ट्रपति बनाया गया। 1918 में यह देश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। 1968 से वह एक संघीय संघ रहा, जिसमें चेक गणराज्य और गणतंत्र और स्लोवाक गणतंत्र शामिल थे। साम्यवादी दल के शासन की समाप्ति के बाद दोनों गणतंत्रों ने दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में अलग हो जाने का फैसला किया और 1993 में चेक गणतंत्र और स्लोवाक गणतंत्र नाम के दो स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित हुए। पूर्वी जर्मनी, पिछले अध्याय में जर्मनी के विभाजन की समाप्ति का उल्लेख किया जा चुका है। यह उन घटनाओं का परिणाम था जो 1989 में आरंभ हो चुके थे। 1989 में जर्मन जनवादी गणतंत्र GDR के शासक दल में सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी के नेतृत्व में तथा सरकार में परिवर्तन हुए। नवंबर 1989 में पूर्वी जर्मनी GDR के नए नेताओं ने बर्लिन की दीवार तोड़ने की घोषणा की। इसके शीघ्र बाद उन राजनीतिक दलों और संगठनों ने खुलकर काम करना शुरू कर दिया जो पूर्वी जर्मनी के शासक दल के नियंत्रण में नहीं थे। 1990 के आरंभ में पूर्वी जर्मनी की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह जर्मनी के एकीकरण के पक्ष में है। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की सरकारों के बीच 3 अक्टूबर 1990 को वार्ताएं हुई, जिसके बाद जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र बन गया। दिसंबर 1990 में हुए देशव्यापी चुनावों के बाद एकीकृत जर्मनी में एक नई संविदा सरकार सत्तारूढ़ हुई। तत्कालिक समस्याएं, यूरोप में साम्यवादी शासनों की समाप्ति और इनकी समाप्ति की द्रुत गति 1989 के बाद घटित सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इस घटनाक्रम की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि रोमानिया को छोड़कर बाकी देशों में यह अधिकतर शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन यह बदलाव समस्याओं से सर्वथा मुक्त नहीं रहा। कुछ देशों में अत्यधिक केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्थाओं के पतन के बाद मुक्त उद्यमों के आधार पर अधिक आर्थिक विकास नहीं हो पाया। कुछ देशों में तत्कालिक आर्थिक समस्याएं और भी जटिल हो गई। भूतपूर्व पूर्वी जर्मनी में बदलाव के कारण कई उद्योग बंद हो गए, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई। अधिकतर पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवादी दलों को लोकतांत्रिक समाजवादी दलों के रूप में पुनर्गठित किया गया। कुछ एक देश में ये दल अत्यधिक शक्तिशाली बन गए और चुनावों में इन्हें बहुमत प्राप्त हुआ। यूरोपीय एकता और यूरोपीय संघ के गठन के बारे में उल्लेख किया जा चुका है। स्मरणीय है कि संयुक्त यूरोप की कल्पना अब केवल पश्चिमी यूरोप के देशों तक ही सीमित नहीं थी। यूगोस्लाविया का विघटन, हाल ही के वर्षों में घटी एक बड़ी घटना, यूगोस्लाविया का टूटना और उसके साथ हुई त्रासद हिंसा है। स्मरणीय है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यूगोस्लाविया का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूगोस्लाविया की जनता ने नाजी कब्जे के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह 6 गणतंत्रों का संघ बन गया। यद्यपि यूगोस्लाविया पर साम्यवादी दल का शासन था, तथापि उसने सोवियत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। जोसिफ ब्रांज टीटो, जिसने यूगोस्लाविया पर नाजी कब्जे के खिलाफ हुए प्रतिरोध का नेतृत्व किया था और जो बाद में यूगोस्लाविया का राष्ट्रपति बन गया था, ने जवाहरलाल नेहरू, नासिर और सुकर्णो के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव डाली। 1980 वाले दशक के अंत में यूरोप के अन्य साम्यवादी शासित राष्ट्रों के समान यूगोस्लाविया में भी साम्यवादी दल का नियंत्रण समाप्त करने की मांग उठी। 1990 के आरंभ में यूगोस्लाविया के अधिकांश गणराज्यों में गैर साम्यवादी सरकारें स्थापित हो चुकी थी। इसी बीच कई गणतंत्रों ने आज़ादी की मांग शुरू कर दी। 1992 के आरंभ तक क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मैसिडोनिया और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और सर्बिया तथा मोंटेनेग्रो ने मिलकर यूगोस्लाविया के नए राष्ट्र का गठन कर लिया। बोस्निया हर्जेगोविना द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा के बाद वहाँ भीषण मारकाट मच गई, जिसमें हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इस गणतंत्र में सर्ब, क्रोट और मुसलमान रहते थे। सर्बिया की सहायता से बोस्निया के सर्बों ने बोस्निया के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। उन्हें एक बहुसांस्कृतिक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बोस्निया हर्जेगोविना का गठन पसंद नहीं था। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना की तैनाती के बावजूद 1992 में बोस्निया के सर्बों और मुसलमानों के बीच रक्त रंजित लड़ाई चल रही है। कुछ सर्ब नेता बोस्निया के मुसलमानों के खिलाफ चल रही लड़ाई को नस्ली लड़ाई, एथनिक क्लिजिंग कहते हैं। यह एक अत्यधिक आपत्तिजनक शब्द है, जिसका प्रयोग एक प्रजाति द्वारा दूसरी प्रजाति के उन्मूलन को न्यायसंगत बताने के लिए किया जा रहा है। यूगोस्लाविया को तोड़ने वाले जातीय संघर्ष को संयुक्त राज्य और यूरोप के कुछ देशों ने प्रोत्साहित किया था, जिसके भयानक परिणाम वहां की जनता को भुगतने पड़े। संयुक्त राज्य के नेतृत्व में नाटो सैनिकों ने सर्बिया पर भयंकर हमले किए। हजारों लाखों लोगों को उनकी जन्मभूमि से बाहर खदेड़ दिया गया और हजारों लोगों को मार डाला गया तथा उनके घरों को जला दिया गया। 2000 तक सर्बिया और मोंटेनेग्रो यूगोस्लाविया के उत्तराधिकारी राष्ट्र बने रहे। 2006 में मोंटेनेग्रो भी स्वतंत्र हो गया। कोसोवो सर्बिया का एक स्वायत्त शासी प्रदेश था, जहाँ की मूल अल्बानिया प्रजाति ने अपनी सेना का गठन कर लिया था और हजारों सर्ब लोगों को अपने अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा था। वहाँ नाटो के नेतृत्व में एक शांति सेना तैनात थी, जिसे सर्बिया के प्रदेश के रूप में कोसोवो की स्वायत्तता को कायम रखने में मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तथापि 2008 के आरंभ में मूल अल्बानिया प्रजाति के नेतृत्व में बनी सरकार ने कोसोवो को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसे शीघ्र ही संयुक्त राज्य और यूरोप के कुछ देशों ने मान्यता प्रदान कर दी। इससे कोसोवो की स्वतंत्रता को समर्थन देने वाले देशों और इसका विरोध करने वाले विभिन्न देशों, विशेष रूप से चीन और चीन के बीच तनाव बढ़ गया। 2001 के आरंभिक दौर में सर्बिया की पश्चिम समर्थक सरकार ने यूगोस्लाविया के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिलोसेविक को संयुक्त राष्ट्र के युद्ध अपराधी ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया, ताकि उस पर बोस्निया में युद्ध के दौरान किए गए अपराधों के आरोप में मुकदमा चलाया जा सके। मुकदमा 5 वर्ष तक चला और उस समय इसे खारिज कर दिया गया जब 2006 में उसे जेल में अपनी कोठरी में मृत पाया गया। हाल ही में जुलाई 2008 में कोसोवो के सर्ब लोगों के नेता क्राड जिंग को उस पर मुकदमा चलाने के लिए हेग प्रत्यार्पित किया गया है। कुछ देशों को इस ट्रिब्यूनल की कानूनी वैधता पर संदेह है।